इतनी कड़ी बड़ी शहर है, मेरी भी ऑफिस में आधी टीम मेरी जो है ना वो एनीवेज वैसे अफसोस हुआ, ऑनेस्ट टू गॉड मुझे दिल से अफसोस हुआ। जुनेद सफदर ने 12 अक्टूबर को 6 मगोइयां खत्म करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में तलाक की तस्दीक की। उन्होंने मुख्तसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि इनकी शादी तलाक पर खत्म होने की खबरें बिल्कुल सच्ची हैं। उन्होंने लिखा कि तलाक इनका जाती मामला है। हाँ, तलाक जाती मामला है। वो जो लोगों के बेडरूम की आपकी अम्मी जान तस्वीरें छापती हैं, और वो जो एक और भी एक लड़की है जो लोगों के बेडरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो उनके बेडरूम का मामला अभी पूरी कौम का जाती मामला है, मगर आपकी डाइवोर्स आपका जाती मामला है। उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि उनकी शादी खत्म होने से मुतल्लिक खबर देते वक्त इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। मजा तो फिर अंदर से कोई तस्वीरें भी लेके चला गया हो। जुनेद सफदर ने उम्मीद का इजहार करते लिखा कि उन्हें तवक्को है कि तलाक का फैसला इनके लिए और इनकी साबिक अहलिया के लिए बायस से सुकून और खुशी होगा। ये जनाब दोनों हीरों के हार और कीमती जेवरात, एंड वेरी सैड। आई विश कि शी वुड नॉट हैव कंसीव्ड। आई विश। तो बहरहाल मियां खानदान से चंद साल होने वाली खुशी की बड़ी तकरीब थी। इससे कबल मरियम नवाज की साहबदे मेहरुन्निसा सफदर की शादी 2015 में हुई थी। उन्होंने अपना लिखा कि न्यूज अबाउट माई डिवोर्स इज ट्रू, दिस इज एन इंटायरली प्राइवेट मैटर एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू रिस्पेक्ट आर प्राइवेसी। आई होप विद दिस डिसीजन वी फाइंड आर पीस इंशाल्लाह। आई विल स्पीक नो फर्दर ऑन दिस मैटर। आई विश हर वेल। चलो जी, छुट्टी हो गई, डाइवोर्स हुई, अल्लाह ताला बेहतर करे। अफसोस हुआ मुझे, वाकई गलत नहीं कहती, मुझे अफसोस हुआ। ऑफ कोर्स माँ बाप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, मगर हेस्टी डिसीजंस, और अब जब पैसे के लिए जब फैसले होंगे और पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, आपने इतना पैसा ज़ाया किया, उस मुल्क की लीडरशिप है जिनके पास, जिस मुल्क में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, जिस मुल्क में आटे का बैग लेने के लिए लोग अपनी जान भी जाया कर देते हैं। सैड। एनीवेज, जिक्र करना चाहती हूँ मोमिन हलाल सुपरमार्केट का। मोमिन हलाल सुपरमार्केट जो है ये कहाँ पे है, ये है 1010 ड्रीम क्रेसेंट के ऊपर। आप जाइए, बकरे का गोश्त और लैम का बकरे का गोश्त ज़्यादा अच्छा होता है। बकरा जिसको गोट कहते हैं और लैम जिसको भेड़ कहते हैं, है ना, इसीलिए कुर्बानी के गोश्त में हल्की सी हमक आया करती थी, वो होता था लैम। बकरे का गोश्त बहुत अच्छा होता है। आई डोंट नो, मैं लेके आई उस दिन, बड़ा मज़े का पकाया। यहाँ पर लैम शोल्डर 799 पाउंड, बीफ का कीमा या चिकन का कीमा 449। इस हफ्ते में यही सेल है, या बिल्कुल साहब। और चिकन लेग्स जो हैं 249 आप पाउंड आपको मिलेगी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 1010 ड्रीम क्रेसेंट के ऊपर। नाम है इनका मोमिन हलाल सुपरमार्केट, एंड 5% डिस्काउंट। मैंने उस दिन जो गोश्त भी लिया, गोश्त भी सेल पे था, फिर टोटल के ऊपर मुझे 5% डिस्काउंट भी मिला। आई इंजॉयड, यस। $7 की $8 की बचत हुई, $1.61 के ऊपर वही 5% हुआ ना, 5, 6, 7, 7.5, $8. गुड मैन, वेरी गुड। आई बॉट जलेबियां फॉर दैट। 416-854-8962 1010 ड्रीम क्रेसेंट के ऊपर मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसर्स। मुझे सरवत आंखें दिखा रही है, बताइए छोटे बच्चे अपने बच्चे, और सरवत तो मेरे हाथों में पली हुई है। अब बताएं, डू यू थिंक इट इज राइट? मुझे आंखें दिखा रही
है अर्पा जी, मुझे स्पॉन्सर आंखें दिखा रहे हैं।
मुझे आंखें ना दिखाया करो।
अच्छा अर्पा जी, टॉप ऑफ द आवर का टाइम हो गया।
आंखें बंद करके।
बहुत प्यारी है।
बहुत शुक्रिया।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL, because we care।
Quick Truck Lube! ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਯੂ ਬਾਈ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੌਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ $4,250 ਦੇ ਰਿਬੇਟਸ ਤਮਾਮ 2023 ਬ੍ਰੌਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂ forddealers.ca।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक्ट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
खूबसूरती ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਲਰ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਥਟਬ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕਲਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਨੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ desicanadian.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਮਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 519-569-9982
ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋਮਸ ਰਿਅਲਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਲੀਡਸ, VIP ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, 1-on-1 ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਟੀਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਲੋਇਲਸ ਟੀਮ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਦੀ, ਆਓ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋਮਸ ਰਿਅਲਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-890-1300 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ehrb.ca।
आइए अलामा इकबाल डे मिलजुल कर मनाते हैं सैटरडे नवंबर 11 ठीक शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सैयद तकी आबिदी, जनाब करामत अल्लाह गौरी साहब, फ्री गिफ्ट, फ्री उमरा टिकट्स और बहुत सारे लकी ड्रॉज, $40 वर्थ के फ्री गिफ्ट पैक हर एक के लिए। टिकट सिर्फ $40 में, जिसमें डिनर और मजेदार एपेटाइजर्स दोनों शामिल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग प्लीज कॉल 6478068116। आइए अलामा इकबाल डे मिलजुल कर मनाते हैं सैटरडे नवंबर 11 ठीक शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सैयद तकी आबिदी, जनाब करामत अल्लाह गौरी साहब, फ्री गिफ्ट, फ्री उमरा टिकट्स और बहुत सारे लकी ड्रॉज, $40 वर्थ के फ्री गिफ्ट पैक हर एक के लिए। टिकट सिर्फ $40 में, जिसमें डिनर और मजेदार एपेटाइजर्स दोनों शामिल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग प्लीज कॉल 6478068116।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
अजीत, सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसको कवर करूँ जिसको मैंने नहीं कवर करना है? भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं नहीं करती। आपसे एक और बात कवर करने लगी हूँ। मुझे याद है कि हमने कनाडा में हमने नया नया प्रोग्राम शुरू किया था, 7-8 नहीं कौन से स्टूडियो में थी मैं, वो अभी 680 स्मॉल में हुआ करती होती थी, बहुत पुरानी बात है। तो वो एक बड़ी खूबसूरत सी यंग बच्ची थी, पाकिस्तानी कर्ली बालों वाली, जिसने मिस यूनिवर्स कनाडा शुरू किया था, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान शुरू किया था। बड़े लोगों ने जनाब उल्टा बोला शोला उसको। अभी वो एक बच्ची है, और ये बच्ची बुनियादी तौर पर शी इज क्रिश्चियन, ठीक है। हर रिलीजन की अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते हैं। अब राज्य के कुरान पाक में सबसे पहले, अगेन आई एम नॉट मौलवी, आई एम नॉट फतवा देने वाला, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट कुरान, नमाज पढ़ना जाती फेल है, हाफिज होना आपका जाती फेल है, ठीक है। बार बार अल्लाह ताला ने कहा कि झूठ मत बोलो, पूरा तोलो, ठीक है। आप झूठ बोलो सिर्फ उस सूरत में जब आपने दो खानदानों को या दो लोगों को लड़ाई से, फसाद को रोकने के लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे काम करने हैं, झूठ भी बोलकर बोलना है, पूरा भी नहीं तोलना, जना भी बहुत करना है, मतलब दूसरे गड़बड़ करें तो आपके पेट में दर्द होती है, जब आप खुद गड़बड़ करें तो आप उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। अब ये खातून एक है, एक बच्ची है पाकिस्तान में। अब वो जो मजहबी इंतहा पसंद लोग हैं, उन्होंने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब भी बोल पड़े इसके बारे में, और वो जो अपने भाईजान है, क्या उनका नाम है, ये पटके वाले जो यहाँ पटका रखते हैं पीले रंग का, ठीक है वो। अब ये कराची शहर से ये लड़की का तल्लुक है, एरिका, इसका नाम है एरिका रॉबिन, बुनियादी तौर पर शी इज क्रिश्चियन, एरिका रॉबिन इज क्रिश्चियन। अच्छा, फंसी कहाँ बच्ची? मैंने कहा ना, इंसान का बाजुकात मोहब्बत उसको फंसा देती है। फंसी कहाँ से कि जब इससे आपको पता है कि टू क्वालिफाई फॉर समथिंग, तो सवाल पूछा जाता है, तुम ये नौकरी करना चाहते हो, तुम क्यों करना चाहते हो? तो एरिका रॉबिन्स से जब वो मिस यूनिवर्स बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो जो क्वालिफाइंग ग्राउंड थे उसमें एक क्वेश्चन था कि तुम मिस यूनिवर्स क्यों बनना चाहती हो। उसने कहा, क्योंकि मैं साबित करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है पसमानदा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में बड़ी आला और मस्बत सोच के हमें लोग हैं ना जी। इतनी पड़ी गई कर लो बात। ये क्रिश्चियन है ये बच्ची, मतलब मुसलमानों का आलम तो ये है कि आपने बेशुमार वीडियोस ऐसी देखी हैं कि मुसलमान औरतें बाज़ूकात वो गालियां दे रही होती हैं जो एक आदमी भी शायद नहीं दे सकता। आप वीडियोज इन दिनों में, पिछले दिनों में आपके सामने से गुजरी हैं, किस किस शरीफा का नाम उन वीडियोज के बीच में आता है, किस किस शरीफ आदमी का नाम उन वीडियोज में नहीं आता। एक वीडियो मैंने, अल्लाह गवाह है कि मैंने शायद इसलिए ऐसी चीजों को मैं नहीं देखती क्योंकि मुझे यकीन है, मैं कल परसों अपने बेटे से भी ये बात करी थी, आई एम वेरी प्राउड कि मेरे कंप्यूटर को, मेरे फोन को, मेरी आईपैड को, किसी को भी कोई चीज के लिए कोई एक भी चीज बुरी नजर नहीं आएगी, not even a single thing. I don't feel like watching something like this. मगर एक पनिशमेंट की वीडियो आई थी, ये मेरा ख्याल कोई नैब का बंदा था या कौन सा बंदा था जो एक औरत को तंग करता था उसकी भांजी के हवाले से कि तुम मिलाओ, उसने कहा आ जा तुझे मिलाती हूँ मैं उससे, तो मैं घर बुला लिया। ये आदमी बेचारा घर आ गया, घर आया तो जिस मकसद के लिए वो उस औरत को प्रेशराइज कर रहा था उसकी भांजी या भतीजी से मिलने के लिए, वो उस आदमी को भी पता था, इस औरत को भी पता था, वो फोन की कॉन्वर्सेशन में भी था और वो भांजी को भी पता था। तो वो मासी थी या फुफी थी, हूएवर शी वॉज, सो शी सेड हाँ आ जाओ मेरे घर आ जाओ, तुम बाहर से मैंने उसको लेके आ सकती, तो तुम मेरे घर ही आ जाओ। तो वो इनके घर आ गया, उन्होंने उसको एक कमरे में बिठा लिया। उसके बाद उस लड़की ने मार मार के जूतियां मार मार के उस आदमी का बिल्कुल बुरकस ही निकाल दिया। तुझको मुझसे चाहिए था, ये चाहिए था अल्टीमेटली उसके साथ, और ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी। यानी आप मुसलमान ये कुछ तो करते फिरते हैं, रिश्वत आप लेते हैं, हालांकि अल्लाह ने कहा कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। ये लड़की क्रिश्चियन है, एरिका रॉबिन इसका नाम है, और उस बिचारी की मैं जब गलती देखी ना तो आई वो सरप्राइज। इस मुकाबले का जो एहतमाम है, यूनिवर्स मिस यूनिवर्स बहरीन और मिस यूनिवर्स मिस्र के फ्रेंचाइजर उनके, अब मिस यूनिवर्स बहरीन भी आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, इजिप्ट भी मुस्लिम कंट्री है, ये इनके दुबई और बहरीन और मिस्र के ग्रुप है जिन्होंने मिलके मिस यूनिवर्स का ये इन्होंने ये प्लान किया. और यूगेन ग्रुप के मुताबिक यूनिवर्स पाकिस्तान के लिए बेशुमार, ये जो ये मिस रॉबिन बच्ची है ये तो एक है ना, वो कहते हैं बेशुमार हमें एप्लीकेशंस मिली. एरिका रॉबिन कहती हैं कि यकीनन ऑफ कोर्स इट्स एन ऑनर कि उसको मिला, मगर अब हुआ फड़ा पड़ा कहाँ. वो कहती हैं कि जब मुझे मुकाबला हुसन के लिए मेरी नामजदगी हो गई ना, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया. हालांकि अगर आप, मैंने पीछे पीछे की तरफ चले जाएं, इससे पहले 2002 में टोरंटो में मुनक्किद हुआ था मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, आपको याद होगा, मुझे वो लड़की आज तक याद है. फिर वो पाकिस्तान पोस्ट के आमिर के साथ मिलकर उन्होंने फिर भी इनकाद किया था, लेकिन 2020 में ये मुकाबला लाहौर मुंतकिल हो गया था. मिस यूनिवर्स पाकिस्तान तो आपने करा लिया था, और आई रिमेम्बर एग्जैक्टली जिस ग्रुप ने इस प्रोग्राम का इनकाद किया था, दे यूज टू कम टू आवर स्टूडियो. उस जमाने में भी बड़ी बैशिंग हमारी हुआ करती होती थी. बहरहाल वो कहती हैं कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्स, मिसेज पाकिस्तान यूनिवर्सल भी है, यहाँ तक कि मिस ट्रांस पाकिस्तान, इस ये भी मुकाबला हो चुका है. एरिका रॉबिन ने बताया कि जूम पर जब ये प्रोसेस चल रहा था, इनको क्वालिफाइंग राउंड्स जो थे सेशन वन एंड सेशन टू, तो उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया, बताइए आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहती हैं. तो इसमें इंटेलिजेंस भी काउंट होती है ना. तो उस बच्ची ने बड़ा कमाल का जवाब दिया. मेरा जवाब था कि मैं उस जहनियत को बदलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है. अब दो तरीकेकार होते हैं, एक तो मलाला यूसुफजई की तरह से आप गोली लगवा लें और उसके बाद आप कहें जी पाकिस्तान में तो पढ़ाई नहीं, पाकिस्तान के आदमी तो बड़े सख्त हैं, वो तो पढ़ने नहीं देते, औरतों को बोरी में बंद करके रखा है. हालांकि ये शाजिया कोई पाकिस्तानी औरत है, मिल के देखें पाकिस्तानी औरतें बहुत बोल्ड हैं, बहुत बोल्ड हैं. तो ये बच्ची ने जो जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती हूँ, मैं वो जहनियत को बदलना चाहती हूँ जिसमें पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है, पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री. लो जी, ये कहने के ऊपर एरिका रॉबिन बेचारी है जो फंस गई. हालांकि पाकिस्तान की जितनी मॉडल्स हैं उन तमाम मॉडल्स ने एरिका रॉबिन्स को सराहा है, उनके बारे में अच्छा कहा. कराची में बताया गया कि तजादात का शिकार कौम है और ख्वातीन और पिछे हुए तबकात से मुतालिक मामलात हमारे इन तजादात को मजीद सामने लेकर के आते हैं. पाकिस्तान बुनियादी तौर पर आमराना जहनीत की हामिल. आमराना जहनीत मेरा ख्याल है हस्बैंड वाइफ आर ऑल गुड. अभी मैं कहती हूँ बेशुमार अच्छे आदमी मौजूद हैं. हमारी मेयर हैं, हमारी डिप्टी मेयर हैं विटपी की मिसेस शाहिद, कमाल की खातून है. और शाहिद साहब उनको हर लिहाज से, आप सलमा जाहिद की बात कर लें, सलमा जाहिद के हस्बैंड उनको फुल फ्लैश सपोर्ट करते हैं. हमारे बहुत से आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत से मर्द पसमानदा सोच के मालिक हैं डेफिनेटली. मगर वो कहते हैं कि अब आप पाकिस्तान को अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान में नाइट क्लब्स अभी भी मौजूद हैं और बहुत सारी और चीज़ें मौजूद हैं. मगर एरिका रॉबिन्स, मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शी इज़ क्रिश्चियन. एंड अगर उसने ये कहा कि मैं उस पसमानदा सोच को ख़त्म करना चाहती हूँ जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक पसमानदा सोच का मुल्क है, बस यहीं पर आके वो लड़की फंस गई. उसने ये कहा कि लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि मिस यूनिवर्स होगी क्या. जी जनाब, अभी एक और भी पता चला, डिप्टी मेयर. हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. हमारे बहुत से मर्द हजरात बहुत अच्छे हैं. डिप्टी मेयर अस्मा मलिक, एग्जैक्टली डिप्टी मेयर कहाँ की हैं ये, 9440 आप मुझे बता दीजिएगा. आई नो वेरी मैनी पीपल जो कि अपनी औरतों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसमें सर मजाहत साहबा के हस्बैंड भी आते हैं. वॉट एवर आई एम आरिफा मुजफ्फर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड मुजफ्फर अली, गेव मी ट्रमेंडियस स्ट्रेंथ. मैंने वो शाहिद साहब की बेगम का जिक्र किया है, शी इज़ डिप्टी मेयर विटपी के इलाके की हैं. ओ यस, टोरंटो डाउन टाउन की डिप्टी मेयर असमा मलिक के बारे में आप बात कर रहे हैं. Thank you very much. Thank you for your help. Anyways, let me take you to our next segment. Aur agla segment hamara janab Fiaz Vilana ke saath hua karta hota hai. Of course, aap tak pahunchane mein hame taawun diya Village Days. Mujhe Village Days pe recently jane ka mauka bhi mila. Khane ke lihaz se bahut aziz, zaiqedar khana. Agar aapne khana hai to Village Days 4141 Dixie Road pe maujood hai. Faisal Chatta sahab ne is banquet hall ko start kiya tha. Food very delicious, variety. यहाँ पर मौजूद है आप चाइनीज भी है कॉन्टिनेंटल भी है आप सैलड्स की एक फुल फ्लैश बार है आप गोलगप्पे खाइए चाट पापड़ियाँ खाइए या फिर स्वीडिशेज जिनका स्वीट टूथ है तो स्वीडिशेज में भी अराउंड 6 or 7 मटेरियल्स की वैरायटी है दे ओपन अ सेकंड लोकेशन विच इज इन ओकविल 2294 लेक शोर रोड के ऊपर ओकविल में विलेज टेस्ट और नंबर आप नोट कर लीजिएगा जो मिसेस सागर की लोकेशन है यहाँ तो आपको 4 बड़े बड़े रूम्स मिलते हैं तो प्लीज़ बी देयर उनका नंबर है 9052323663 या फिर जो ओकविल की लोकेशन है 9052262294 थैंक यू वेरी मच आप तमाम का इसके अलावा और भी बाकी स्पॉन्सर्स का भी जिक्र करती जाऊंगी स्पॉन्सर्स हमें बहुत इन चीजों के काबिल करते हैं वरना मेरी तो क्या औकात है और क्या बसात है फियाज विलाना साहब मेरे साथ हैं विलाना साहब बुनियादी तौर पर अपने प्रोग्राम्स करते थे लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं अपना एनालिसिस पेश करते हैं आप लोगों का अपना एनालिसिस है मगर फियाज विलाना साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर हम आपको खुश आमदीद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर
वालेकुम अस्सलाम और आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम
थैंक यू वेरी मच मेरे एक भाई हैं 6712 मतलब हैं थोड़े से लड़ाके से ही 6712 आखिरी चार नंबर बता रही हूँ उन्होंने कहा माय प्रेडिक्शन फॉर द वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया विल फिनिश फर्स्ट एंड प्ले थर्ड प्लेस न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका सेकेंड प्लेस विल प्ले ऑस्ट्रेलिया फोर्थ प्लेस इन सेमीफाइनल इंडिया विल प्ले फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कोई तो गल चंगी कर लिया करो इंडिया विल प्ले फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान यस वॉच इट वॉच माय वर्ड्स इंशाल्लाह ताला फिर ना कहना मेरी जुबान काली थी जनाब फियाज विलाना साहब बहुत सारी बातें आपसे करनी है मेरे तक भी आज एक खबर आई जिसको मैंने शेयर कर चुकी हूँ किसी हद तक मियाँ साहब के बारे में बहुत से लोगों की रिजर्वेशंस हैं कि बड़ी दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान जाने का कहा बड़ी दफ़ा रुक गए मगर अब तो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी उनकी मर्जी के मुताबिक हो गया है मियाँ साहब बुध वाले दिन इंग्लैंड से उठे हैं और सऊदी अरेबिया रवाना हो गए हैं एंड नाउ ही इज हेडिंग टू पाकिस्तान ऑन 21st किसी भी अदालत से जाके बेल हो जाएगी उनकी तो क्या फरमाएंगे इसके बारे में
कुलदेव साहब आप पे फोन करके मैसेज कर रहे थे ना कि पाकिस्तान पांचवी पोजीशन पे होगा और शायद इंडिया और साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेंगे इन्हें कहें थोड़े से अपने हॉर्सेस को होल्ड साउथ अफ्रीका ने दो मैच बहुत अच्छे खेले हैं वाकई उनकी टीम इस वक्त उसमें है लेकिन वो आपको पता है दे आर फेमस एंड दे आर बींग कॉल्ड एज चोकर्स कि वो हर इम्पोर्टेंट मौके पे जाके चोक कर जाते हैं तो अभी उनका वो अभी वेट करें थोड़ा सब्र करें अभी आगे बहुत से मैचेस आने हैं दो दो मैचेस सारी टीमों ने खेले हैं और इस वक्त वहाँ उस इस वक्त जो है बेशक टॉप पे साउथ अफ्रीका इंडिया पाकिस्तान और एक और टीम है चार चार पॉइंट्स के साथ लेकिन बाकी अभी नीचे ऑस्ट्रेलिया दे कैन कम बैक वापस आ सकते हैं अच्छी फॉर्म में इंग्लैंड कम बैक कर सकता है तो अभी बहुत दूर है देखें क्या होता है
हनूज दिल्ली दूरस्त मगर एक बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल इवन इंडिया की टीम बड़ी बेहतरीन टीम है आपने भी जैसे कहा ना साउथ अफ्रीका के लिए चोकर्स का नाम इस्तेमाल किया गया था इस दफा इंडिया की टीम के लिए आपको पता है चोकर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया
इंडिया वालों ने तो हमने क्योंकि पिछला मैच बहुत अच्छा खेल के जीता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने श्रीलंका के अगेंस्ट 345 और 348 व्हाटएवर इट वाज हमने चेज किया 344 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड कप में आज तक किसी टीम ने इतना स्कोर नहीं किया तो इंडिया को लगा कि पाकिस्तानी टीम की बहुत बल्ले बल्ले हो गई है और पाकिस्तानी टीम वापस एक यूनिट बन गई है और फॉर्म में आ गई है और हमारे साथ ये बहुत अब सैटरडे को जो कंपटीशन हमारा मुकाबला होना है बहुत सख्त होना है तो उन्होंने कहा हम अपना प्रिपरेटरी उनका जो मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान उन बेचारों को गुस्सा जो श्रीलंका हमें नहीं हरा सका तो उसका गुस्सा उन्होंने अफगानियों पर कल निकाल दिया है इतना बुरा उन्हें मारा है बेचारों को, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी इतना मारने की जितना उन्होंने मार दिया है उन्हें, और वो शायद अपना रन रेट बेहतर करना चाहते थे या अपनी प्रैक्टिस कोई जरूरत से ज्यादा करना चाहते थे, एनी और जो भी था। तो अब हमारी टीम इस वक्त वाकई इस पोजीशन में है कि हम सैटरडे वाले दिन इंडिया को टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे जी।
इंशाल्लाह तबारक व तआला, इंशाल्लाह तबारक व तआला। अच्छा जी, अब आ जाए ना वो सवाल भी बुध के दिन, बुध ते कम सुध। और
अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब का हमारे लोग जो है ना थोड़ा चीजों को बैकग्राउंड पे देखना पड़ता है। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड क्यों गए थे? इंग्लैंड गए थे बहुत सारे इदारों को, हमारी पूरी कौम को, हमारी उस वक्त की इमरान खान की भोली गवर्नमेंट को, डॉक्टरों को, सबको चीट करके वो गए थे। और उनके प्लेटलेट्स लाहौर से जब चले थे तो बहुत नीचे थे, और मीटिंग में जब कैबिनेट की मीटिंग में उनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स जो सही थी या जेली थी जैसी भी थी पेश की गई, एक नहीं मुख्तलिफ लैब्स की थी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की भी थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी समझ नहीं लगी जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, जब वो रिपोर्ट्स पेश की गई तो हालत ये थी कि शीरी मिजारी जैसी जो इंसानी हकूक की मिनिस्टर थी इमरान खान की गवर्नमेंट में और बड़ी सॉफ्ट हार्टेड खातून है, वो लिटरली रोना शुरू हो गई मीटिंग में। इस हद तक उन्होंने सिस्टम को चीट किया और जेली प्लेटलेट्स का अप एंड डाउन करके वो वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वो तो हट्टे कट्टे हैं, ठीक ठाक हैं, वहां उन्होंने पिज्जे भी खाए, कॉफियां भी पिए, वॉक्स भी की और मीटिंग्स भी की, भत्ता के कैबिनेट को कई दफा उन्होंने तलब किया, हालांकि वो खुद मतलूब थे हुकूमत पाकिस्तान को, लेकिन उनका कमाल ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को वो अपने पास लंदन में तलब करते थे और वहां फिर कैबिनेट की मीटिंग होती थी, अहम फैसले होते थे, पेट्रोल की कीमत कितनी कम करनी है ज्यादा करनी है फैसले उनके हाथ से होते थे। एक दफा उन्होंने अलबत्ता ड्रामा किया था कि उनके सामने जब समरी रखी गई कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, तो मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये समरी देखी और काफी डिस्कशन के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा, तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठकर चले गए। अब ये अपने तौर पर ये बताना चाहती थी कि बड़ी वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, बड़े पब्लिक की वो हैं, हमदर्द हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे ये फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ और उठ के चले गए। मियां साहब, फैसले बर्दाश्त करने के लिए आपको, अगर आपको अल्लाह ने इतनी ताकत या इस्तेआत दे दी थी तो आप इमरान खान की तरह डट के खड़े हो जाते और कहते कि हाँ मैंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी, आईएमएफ से टक्कर लेनी है तो ले लेनी है, और आपको अपनी कौम पे तकिया होना चाहिए था जिस तरह इमरान खान ने अपनी कौम पे तकिया करते हुए आईएमएफ से अपने वजीर खजाना शौकत तरीन को कहा कि आईएमएफ को आंखें दिखा दो, मैं इस कौम को उठा सकता हूँ, हमारी कौम उठ सकती है और हम मेहनत करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। इमरान खान ने तो अपनी कौम पे भरोसा करते हुए, तकिया करते हुए और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, अपनी आईटी इंडस्ट्री पे, अपने जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके फॉरेन रेमिटेंसेस पे, इन सब पे भरोसा करते हुए इमरान खान ने डट के आईएमएफ को आंखें दिखाई थी, जिसे बाद में आप ये कहते रहे कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ जो है पूरा नहीं किया मुआहदा और उसका हमें ये फॉल आउट हुआ। हाँ, पूरा मुआहदा करना या ना करना, ये जो उस वक्त का वज़ीर आज़म होता है, जो हुकूमत होती है, जो कायद होता है पार्टी का, जो सरबराह होता है, उसके अपने हक में हाथ में होता है। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ उठ के चले गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इस हकदार को या मिफ्ता इस्माइल को कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाओ और मेरे लोगों पर बोझ ना डालो। अब वो पाकिस्तान रवानगी के लिए रवाना हो चुके हैं, लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, आज उन्होंने माशाल्लाह उमरा भी कर लिया है, अल्लाह ताला उनका कबूल करे, और उन्होंने जो दुआएं मांगी हैं चौथी दफा अपना वज़ीर आज़म बनने की, वो तो पता नहीं पूरी हो या ना हो, लेकिन अगर उन दुआओं में अगर एक दुआ ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम की और पाकिस्तान मुल्क की खुशहाली, बेहतरी और तरक्की के लिए अगर कोई दुआ मांगी है तो अल्लाह ताला वो कबूल करे, आमीन। अब वो वहां से कतर जाना चाहते थे, लेकिन कतर के तो जहां सैफुररहमान जो उनके कनेक्टर हैं कतर गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ कोई खानगी मामलात हो गए हैं, वो शायद कतर अब ना जा सकें। सऊदी अरब में वो 5-6 दिन उनके क्याम का इरादा है और वहां वो कोशिशें कर रहे हैं कि एमबीएस मोहम्मद बिन सुलेमान उनसे मुलाकात हो जाए या और किसी हाई अप से मुलाकात हो जाए और वहां से कुछ गारंटी मिल जाए। उनका इरादा तो ये भी था कि वो दुबई से और यूएई से और सऊदी अरब से, अंदाजा था मुस्लिम लीग नून वालों का कि 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स लेके या 10 अरब डॉलर लेके पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान की हालात बदल जाएंगे। लेकिन ये जो हमास वालों ने अटैक किया है, हमास वालों ने अटैक पता नहीं क्यों किया है हमास वालों ने, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे 10 अरब डॉलर के छाबे को उन्होंने उलट दिया है। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारे मियां नवाज शरीफ साहब इस उम्मीद पे बैठे हुए थे कि हमें सऊदी अरब से और यूएई से 10 अरब डॉलर मिलेंगे, लेकिन अचानक उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, हमास और इसराइल की जो जंग छिड़ गई है उसमें अब वो 10 अरब डॉलर क्या, हमें तो किसी ने 5 अरब डॉलर भी नहीं देने, क्योंकि जब आपके अपने घर में आग लगी हुई हो, आपके अपने मसाइल इतने ज्यादा हो तो आप कैसे किसी और को दे सकते हैं, और वो भी खैरात के तौर पर, कोई उधार हमारा उन्होंने वापस नहीं करना पाकिस्तान का, वो तो एक बख्शीश थी। अगर वो दे देते इस उम्मीद पे कि मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें कायल कर लेते कि हाँ वाकई मैं आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने वाला हूँ और मुझे हर तरफ से गारंटीज मिल गई हैं। और जहां तक गारंटीज की बात है, ये कैसे हो सकता है कि आप लंदन में बैठ के, पहले आपने गुजरांवाला की स्पीच में, एक स्पीच में आपने 11 दफा उस वक्त के आर्मी चीफ, हाजिर सर्विस आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के हाजिर सर्विस DGISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक स्पीच में 11 दफा उनका नाम लेके उनको हदफ तनकीद बनाया हो। उसके बाद फिर मामला जैसे तैसे चल गए, मजबूरी थी, इमरान खान को निकालना था, उन्होंने निकाल दिया गया, या इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कामयाब हो गई किसी तरीके से भी। शहबाज शरीफ को लाना था क्योंकि शहबाज शरीफ ही उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें रखने वाले पार्टी के लीडर थे। अगर वो आ भी गए उसके बाद भी आपको हुकूमत मिली, आपने 16 महीने दबा के अपनी मर्जी के फैसले भी कर लिए, अपना जो कुछ आपने करना था सीधा कर लिया, नैब की तरमीम कर ली, केसेस खत्म कर लिए, इसहाक डार साहब ने 4 साल की सेनेटर के तौर पर अपनी तनख्वाहें ले ली, अपने घर खुलवा लिए, अकाउंट खुलवा लिए जो फ्रीज हुए हुए थे, अपने केसेस खत्म करा लिए, सलमान शहबाज ने वहां से सीधी फ्लाइट ली, एयरपोर्ट पे पहुंचे, लाहौर उतरे, आगे से प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जाके घर में क्याम फरमाया, अगले दिन वो कोर्ट में जाके उन्होंने अपनी जमानत कराई और अपने केसेस खत्म कराए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ने अपने केसेस खत्म कराए और पता नहीं किस किस ने इससे फायदे उठाए, सारे आपने काम कर लिए। उसके बाद फिर आप टेढ़े के टेढ़े साबित हुए, आपने फिर लंदन से बैठ के एक स्पीच की और उसमें आपने एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एक्स चीफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोसा उमरता बंदियाल साकिब निसार और एक्स DGISI फैज हमीद वगैरह का और मौजूदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थर्ड सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाज़ुल हसन का नाम लेके आपने कहा कि उनका एहतसाब होना चाहिए। आपने ये स्पीच कर ली, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, रेड कार्पेट मिलेगा? मियां साहब, ये सारा सिर्फ आपको पाकिस्तान लाने तक की बात है। जब आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे आपको असल भाव उस वक्त पता चलेगा। और वो जो अहमद मुश्ताक का शेर है ना कि पता चलेगा सफर में मेरी वहाबन को कि ये ट्रेन तो अजमेर जाने वाली है। मियां साहब, ये ट्रेन अजमेर जाती है या दाता दरबार, ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं, पाकिस्तान पहुंचने के बाद आपको असल रंग पता चलेगा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और हमारे इदारों का, उन इदारों का जिनके लोगों के आप नाम ले लेके उन पर तनकीद करते रहे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फॉर एग्जांपल, उसमें 3 मेन पॉइंट थे। एक पॉइंट मेन ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो सारा इख्तियार एक मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में है वो नहीं होना चाहिए, 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास होना चाहिए। यह डोल तो डाला था मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने उमर अताब बंदियाल को बांधने के लिए, लेकिन उमर अताब बंदियाल साहब उस वक्त तो अपना टाइम गुजार गए, उन्होंने इसे होल्ड पे रखा। अब काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि 5-6 महीने इन्होंने कोई केस ही नहीं लिया था और नाराज होकर बैठे रहे थे, और अब वो अपनी उस नाराजगी को जस्टिफाई करने के लिए कि जब हमारे पास 56,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सेकंड सीनियर मोस्ट जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो सिर्फ इस बात पे किसी केस को हाथ ना लगाएं कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को क्लियर करें फिर मैं केसेस पकड़ूंगा, वो अपनी 5-6 महीने की उस खिफ्त को मिटाने के लिए काजी फायज ईसा साहब इस मामले को निपटाना चाहते थे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो वाकई 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी का मामला करें, और इसलिए भी वो मामला करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता है कि 3 सीनियर मोस्ट में से एक वो खुद हैं, एक जस्टिस तारिक मसूद हैं जो उनके हमनवाह हैं, उनके दोस्त हैं और उनको किसी बात पे वो नो नहीं कहते। तीसरे नंबर पे इजाज़ुल हसन है, वो अगर 2-1 की अक्सरियत से कोई एतराज कहीं करेंगे भी तो उसकी कोई बात नहीं, इसलिए काजी फायज ईसा साहब की ये फेवर में जाते था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि अपील करने का हक बिल्कुल होना चाहिए, ये एक मफादे आमा की बात है, वाकई अपील का हक होना चाहिए कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी सीनियर जज 100 मोटो ले लेता है और उसकी अपना फैसला सुना देता है तो जो भी मुतसरा पार्टी है उसे अपील का हक होना चाहिए, ये तो पब्लिक के फेवर में बात जाती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट थी कि बैक डेट से अपील का हक मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे लोगों को फायदा पहुंचाना था। यहां आके असल बात क्लियर हुई कि वो जजेस जो पहले तो काजी फायज ईसा साहब के साथ 9-6 के साथ तरमीम नंबर 1, तरमीम नंबर 2, शिक नंबर 1 और शिक नंबर 2 पे काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठे हुए थे, तीसरी शिक पे जब बात आई कि मियां नवाज शरीफ साहब को फेवर देनी है या नहीं देनी, उस वक्त 3 जजेस, वो कौन से 3 जजेस थे, जस्टिस एहसन अजहर रिजवी थे, मोहम्मद अली मजहर थे और याहिया आफरीदी थे। इसका मतलब है जो भी हमारे मुख्तसर हल्के हैं, जो भी ताकतवर हल्के हैं जिनकी बात चलती है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे आरफा बाजी आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त अमल दखल किसका है, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है ना, हमारे चेयरमैन सेनेट किसके कहने पे चलते हैं,
जो एस्टेब्लिशमेंट के, बिल्कुल जो एस्टेब्लिशमेंट इनके थी इस वक्त तो और कुछ हो ही नहीं रहा, इवन वो जो
हमारे
नादरा में इन्होंने हाजिर सर्वर जनरल लगा दिया था,
नादरा का चेयरमैन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है
और हाजिर सर्वर,
बिल्कुल हाजिर सर्विस नादरा का चेयरमैन है, नैब का चेयरमैन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, पंजाब गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, सिंध का चीफ मिनिस्टर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, चेयरमैन सेनेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, आरिफ अलवी साहब को जो स्क्रीनशॉट दिखाए गए उसके बाद वो भी अब उनके ही हुए और उस पर बात खुल के हो चुकी है, इमरान खान नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित से लेकर वहां क्वेटा तक अगर किसी कोई पत्ता भी हिलता है तो वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। ये कैसे हो सकता है कि ये तीन जज साहबान याया अफरीदी, मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहर रिजवी, ये तीनों अचानक शिक नंबर तीन पे मियां नवाज शरीफ को फेवर देने पे एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ चले गए और फैसला 7-8 के उससे अक्सरियत से इनके मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो गया। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में इन तीन जजेस पे नजर रखनी होगी हमारी आवाम को कि ये अब पता चल गया है कि ये कहां से इशारे मिलते हैं और कहां के इशारों पे ये चलते हैं। मियां साहब को ये बात समझ आनी चाहिए, लेकिन चूंकि मियां साहब को पाकिस्तान लाने तक का मामला है, जब तक पाकिस्तान मियां साहब नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक उनकी हर बात मानी जाएगी और बाजार ये शो किया जाएगा, टेलीविजन पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे, प्रोटोकॉल, उनका इस्तकबाल, सारा कुछ मियां साहब की फेवर में होगा। लेकिन जब मियां साहब पाकिस्तान में कदम रखेंगे उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये ट्रेन अजमेर जाती है, दाता दरबार जाती है या अटक जेल जाती है, ये उसके बाद पता चलेगा। जी
बहुत शुक्रिया। अभी जब आप बात कर रहे थे ना, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। देखिए मैं जाती तौर पे, हम बाज़ोकात चीजों को बाय कर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं आई वाज सोल्ड कि नादरा का जो अब चेयरमैन लगाया है वो जनरल है और जनरल भी रिटायर्ड जनरल नहीं है, आर्मी से जनरल है जिनको यहाँ किया। यस, ही इज वेरी क्वालिफाइड, ही इज अ मैन जिन्होंने एटॉमिक पावर का जो प्लांट है उसको भी लुक आफ्टर किया, उन्होंने मेरा ख्याल है PhD IT में स्पेशलाइजेशन किया। अब फयाज विलाना साहब इसको ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप इमेजिन करें कि नादरा वो इदारा है जो कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, क्योंकि ज़ाहिर हर इंसान का शिनाख्ती कार्ड, फयाज विलाना साहब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे शिनाख्ती कार्ड और हमारे फिंगरप्रिंट सारे वहाँ पे हुआ करते होते हैं, मगर वहाँ पर आर्मी का एक वर्किंग इन जॉब, नॉट रिटायर्ड, प्रेजेंट इन जॉब जो है जनरल को जब लेके आए हैं, तो भाई फिर जनरल की धाक तो जनरल की होती है जो यूनिफॉर्म पहन के आए, तो फिर तो वो जिस चीज को कहेगा वोट पाई जाओ या इन्फॉर्मेशन दे ही जाओ तो वो यू कुछ दे ही जाना है। क्या फरमाएंगे इसके बारे में?
अच्छा, ये जो वोट वाली बात है ना, वोट अभी दूर है। अगर कोई इस तरह के शकूक व शुबहात जिस तरह के आप इजहार कर रही हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, पहली बात तो यह कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कोई उस तरह की ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले को उठाएंगी तो यकीनन इलेक्शन के अनाउंस होने तक या इलेक्शन के आने तक में भी इन जनरल साहब को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि ये कोई इस तरह नहीं है कि एक दफा लगा दिया गया तो वो मुश्किल वहां बैठ गए हैं। हमें तो आज की बात करनी चाहिए, और आज जब से उन्होंने वहां पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने छानबीन शुरू किया है, आज की ताजा तरीन रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब से 12,000 उन अफगानियों का रिकॉर्ड पकड़ा गया है और अब उन्हें सऊदी गवर्नमेंट से कहा जाएगा कि इन्हें वहां से डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान के हवाले किया जाए। 12,000 ऐसे अफगानी शहरी हैं जो पाकिस्तान के फेक शनाख्ती कार्ड्स पे उन्होंने पासपोर्ट बनवाए और पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे वो सऊदी अरब में जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 12,000 अगर सऊदी अरब में से पकड़े गए हैं, और ये सिर्फ एक बंदा, दो बंदे गिरफ्तार हुए हैं नादरा इस्लामाबाद के, दो, एक ऑफिसर है और एक लोअर ग्रेड का बंदा है, पूरा गैंग है उसका, और लाहौर में कोई इनका मेन था जो प्राइवेट बंदा था जो इनको कनेक्ट करवाता था, जो सारे अफगानियों के मामलात करता था, वो लाखों रुपए लेके लोगों के पहले शनाख्ती कार्ड बनवाते थे, फिर लाखों रुपए लेके उनके पासपोर्ट बनाते थे और फिर वो वीजे लेके बाहर निकल जाते थे। अगर सऊदी अरब से 12,000 निकल आए हैं, UAE से अंदाजा करें कितने निकलेंगे, बाकी मिडल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से कितने निकलेंगे, फिर फार ईस्ट में हमारे पाकिस्तानी काफी गए हुए हैं, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, उधर गए हुए हैं मजदूरी के लिए, वहां से कितने अफगानी निकलेंगे। अगर तो हमारे जनरल साहब ये इस तरह की सफाई करने आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइवेट जितने भी चेयरमैन नादरा इससे पहले थे, ये सारा कुछ उनकी नाक के नीचे होता रहा है। आज अगर हमारे हाजिर सर्विस एक आर्मी जनरल ने पकड़ लिया इस तरह का मामला और मजीद बेहतरी आ रही है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। हाँ, इलेक्शन से पहले पहले इन्हें वहां से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के फिर शकूक व शुबहात जो होंगे कि वोट कहाँ डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, किस तरह डाल रहे हैं, वो वाकई लोगों के लिए एक तश्वीशनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज है जो वाकई एक आम आदमी समझता है कि मेरे पास एक ही हक है अपनी राय के इजहार का, और वो वोट वाला दिन है। अगर वोट वाले दिन मेरे वोट के साथ इस तरह का कुछ हाथ हो जाना है तो वो फिर इस पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सिस्टम से मायूस हो जाएगा, जो कि तबाहकुन सूरत हाल होगी। एक और इस अफगानियों के मामले में एक मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि UNHCR और IOM ने पाकिस्तान से अपील की है कि अफगान शहरियों को जो आपने कहा है कि 31 अक्टूबर से पहले पहले आप पाकिस्तान छोड़ दें, अब सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, इन 20 दिनों में वो कहते हैं आगे हार्श वेदर आ रहा है अफगानिस्तान में, तो ये लोग मूव नहीं कर सकते, इन्हें मूव ना किया जाए, इनकी कुछ अरेंजमेंट की जाए। बिल्कुल ठीक है, अगर UNHCR या IOM जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, अगर वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो हम तो पिछले तकरीबन 8-9 महीने से इस्लामाबाद के 7 से 10 होटल बुक हैं अफगानियों को, सिर्फ 7 दिन वहां क्याम कराया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है और उसके बाद IOM वाले उन्हें कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, इटली में, यूके में और दुनिया भर में उन्हें लेके जाते हैं और वहां छोड़ के आते हैं खैर वाफियत से। अगर इस तरह का इंतजाम आप करते हैं, जिस तरह पहले पाकिस्तान के होटल्स को, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट वालों को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को IOM के जरिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के जरिए पेमेंट करके अगर आप उनको सेटल कराना चाहते हैं तो वेलकम। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया है कि ये जो गैर कानूनी अफगानी शहरी पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं तो उन्हें निकालना है तो निकालना है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह हाजी कैंप है हमारा इस्लामाबाद में, बहुत बड़ी जगह है, इसके अलावा और इस तरह के लियाकत जिम्नाजियम, जिनाह स्टेडियम और बहुत सारी जगह हैं, वहां आप इन अफगानियों को इकट्ठा कर लें, वहां उन्हें क्याम कराएं, उनके खाने पीने का, रिहायश का पूरा इंतजाम किया जाए और जब तक उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक उसके अखराजात UN बर्दाश्त करे, IOM बर्दाश्त करे, UNHCR बर्दाश्त करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन इस अपने फैसले से 31 अक्टूबर से पहले पहले गैर कानूनी अफगानियों को पाकिस्तान से निकल जाने वाले फैसले से वापस नहीं हटना चाहिए। हाँ, UNHCR और IOM को कहना चाहिए कि अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आगे आए, पैसा रखें सामने, पैसा खर्च करें इन पे, हमें नितफस देने के लिए तैयार है जी।
बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप पॉलिटिकल लिहाज से और चीजों को कवर करेंगे। इमरान खान साहब, उस्मान डार को आपने अपने लास्ट प्रोग्राम में कवर किया था, इमरान खान साहब का सुना है वेट लॉस बहुत हुआ है, व्हाट डू यू सजेस्ट के क्या पोजीशन होगी इमरान खान की? सुना है कि कोई बैकडोर पे मीटिंग्स भी चल रही हैं, अगर है तो क्या है?
अच्छा, जो बैकडोर वाली मीटिंग्स है ना, बैकडोर वाली मीटिंग्स आप देखें, मोहम्मद अली दुरानी थोड़े से एक्टिव हुए फिर खामोश हो गए, असद कैसर थोड़े से एक्टिव हुए फिर वो पीछे हट जाते हैं, बैकडोर पे हर वक्त रबते चल रहे होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि रबते खत्म हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी जमात है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी कोई 2-4-6 बंदों की बात नहीं है, 150 तो जर्नैल है हमारा GSU में सिर्फ, इसके अलावा और लोग हैं पाकिस्तान में, इंटेलिजेंसी है, अकेडेमिया है, फिर लोग इस तरह के मुख्तलिफ इदारों में हैं, चाहे वो सिविल में हों, चाहे रिटायर्ड हों, चाहे हाजिर सर्विस हों, सारे लोग कंसर्न हैं इस इशू पे कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को इस तरह दीवार के साथ लगाना है कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि इंटरनेशनली भी आपके लिए कोई अच्छा मैसेज पाकिस्तान का नहीं जा रहा। और फिर जिस तरह के टोले को आप पहले 16 महीने ला के आपने बिठाए रखा, आप अगर दोबारा उन्हें लाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? और वो मियां नवाज शरीफ जिस पे आपको यकीन ही नहीं है, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी ताजा तरीन कहा कि मैं साहब हम चाहते हैं उनका, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, तो मैंने एक प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को बताया था कि हमारे एक सीनियर साफी इस्लामाबाद के जिनका रबता है कमर जावेद बाजवा साहब से, उन्होंने उनसे पूछा कि कमर जावेद बाजवा साहब, ये मियां साहब ने फिर दोबारा ये क्या तकरीर करनी शुरू कर दी है? तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बंदे की फितरत तो नहीं बदलती ना, कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि बंदे की फितरत तो नहीं बदलती ना, तो जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के अगर जेहन में ये है कि मियां साहब की फितरत नहीं बदल रही, ये वही डॉन लीक्स वाले हैं और ये वही हैं जो पाकिस्तान की सिविल सुप्रीमेसी के नारे की आड़ में अपनी जाति सुप्रीमेसी की बात करते हैं, सिविल इदारों को मजबूत करने की बजाय अपनी जात का और अपने खानदान को मजबूत करने की बात करते हैं और उसके लिए वो बड़ी सी बड़ी दीवार के साथ भी सर फोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए यहां से आगे का सफर कोई आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दूसरी तरफ भी रबते खत्म नहीं करने, रबते जारी रखने हैं। लेकिन चूंकि अब मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके पूरे खानदान को और उनकी पार्टी को और उनके चाहने वालों को और उनके हमदर्दगान को ये तासर देना है कि मियां साहब के लिए सब हरा हरा है, इसलिए अभी वो फिल वक्त बैक बर्नर पे रखे हुए हैं उन्होंने जो बैकडोर रबते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, वो अरेस्ट हो जाएंगे, जब बिहाइंड दीवार चले जाएंगे, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर मियां नवाज शरीफ से भी बात होगी, फिर शहबाज शरीफ से भी बात होगी। ज्यादा चांसेस यही हैं कि मियां नवाज शरीफ की दाल ना गले, शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की दाल गल जाए। शहबाज नवाज शरीफ साहब को तो जो उनकी पहली गुजरांवाले वाली स्पीच थी वही बड़ी भारी थी, अब आखिरी इन्होंने जो स्पीच कर दी है ये शायद उससे भी ज्यादा भारी है, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब की तो वापसी के कोई चांसेस, वापस बैक टू इक्तदार तो चांसेस नहीं है। हाँ, बैक टू पाकिस्तान, बैक टू इस्लामाबाद, बैक टू पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें आ सकते हैं। हाँ, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी आइंदा इलेक्शन में बिहाइंड दी बार होंगे और इमरान खान भी बिहाइंड दी बार होंगे, पार्टियां दोनों की इलेक्शन लड़ लेंगी। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर निकल के जलसों से खिताब करेंगे तो फिर ये जो बैकडोर रबते जिनकी आप बात करते हैं और बैकडोर रबते हर वक्त मौजूद होते हैं, वो बैकडोर रबते मजबूर करेंगे हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान को भी बाहर निकल के स्पीचेस करने दें और इमरान खान पे जितने ये जो केसेस साइफर ये वो इधर उधर हैं उसको एक हद तक वो लेके जा सकते हैं, उस हद तक जहां वो इमरान खान से बेहतर कोई डील, बेहतर कोई एग्रीमेंट, बेहतर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर सकें। क्यों? कि ये हो ही नहीं सकता कि अगर इमरान खान ने केसेस से निकलना भी है तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो तय होंगी, अगर उसने इमरान खान ने बिहाइंड दी बार रहना है फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी, इमरान खान की पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात होगी, और टर्म्स एंड कंडीशंस हम कोई पाकिस्तान दुश्मन दो कुवतें नहीं है उनकी नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान के ही लोग हैं, चाहे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं, हमें एक दूसरे से कम करनी चाहिए और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का हौसला हम लोगों में होना चाहिए। जी,
बहुत सारी चीजों को आप भी कवर करेंगे मगर मेरा आज बड़े गम के साथ मैंने शेयर किया, मुझे पाकिस्तान की सूरत हाल को भी देखती हूँ तो आई फील सैड, मगर सियासत सब कुछ अपनी जगह पे है। जुनेद सफदर ने आज कन्फेस किया है इंस्टाग्राम अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि यस उनकी डाइवोर्स हो गई। कैसे मतलब दुनिया में वैल्यूज क्या क्या इतना फुकदान है कि हम अपने गम, क्या माँ बाप को अब गम नहीं होता अगर बच्चे किसी ऐसी टूट फूट का शिकार होते हैं, या बेहिसी का दौर
है? नहीं, आप जुनेद सफदर और उनकी मिसेज उनके फ्यूचर के लिए हम दुआ कर सकते हैं, ये हमें जनरली हमारी सोसाइटी को देखना होगा, आप ओवरऑल देखें पूरे पाकिस्तान में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी ये जो सेपरेशन और डाइवोर्स की रेशियो है बहुत बढ़ गई है, इस वक्त उनका पर्सनल मामला है, इस पे मजीद बात भी हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में ओवरऑल ऑब्वियसली ये चीज इसमें इजाफा हुआ है, और उसमें एक बड़ी वजह ओपननेस है, उसमें मीडिया है, उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें फिर ये है कि हमारे पास लोगों के पास पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, इख्तदार इख्तियार चीजें ये सारे आम लोगों के बच्चे बच्चियों के पास लेटेस्ट जदीद अपना आ गए टेलीफोन और सारी सहूलतें, तो उसकी वजह से हमें उस तरह जो एक उनकी मेंटल ग्रोथ या मेंटल हेल्थ की है उस पर हम काम नहीं होती, हालांकि सैफ रहमान साहब को अपनी बेटी के लिए या मरियम सफदर को अपने बेटे की मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देने के लिए या उनकी ग्रूमिंग के लिए या उनकी काउंसलिंग के लिए, इनके पास तो दुनिया के बेहतरीन काउंसलर मौजूद थे, अरबों रुपए के असासाजात हैं मरियम नवाज के भी और अरबों रुपए के मालिक हैं सैफ रहमान भी, इनके पास कोई कमी नहीं थी, ये दुनिया का महंगे से महंगा काउंसलर और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और साइकैट्रिस्ट और डॉक्टर्स और वो सारी सहूलतें अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन अगर उनकी नहीं बनी तो अच्छी बात है कि उन्होंने ज्यादा इसे ड्रैग करने की बजाय इस वक्त एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और अनाउंस भी खुद सफदर ने कर दिया है तमाम उन अफवाहों से और उस फसाद फैक्ट्रियों से बचने के लिए, अच्छा किया उसने बच्चे ने खुद अनाउंस कर दिया, इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी पे हमारे लोगों में हेल्थ पे जो मेंटल हेल्थ है और इस तरह के हमारे सोशल इश्यूज हैं उस पे काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। जी
बहुत शुक्रिया फयाज विराना साहब, यहाँ से आप अपना आखिर में कंक्लूड कीजिएगा प्रोग्राम को, जैसे भी आप कंक्लूड करना चाहते हैं।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस पे हमास पे और इसराइल पे बात
मैं बिल्कुल करना चाहती थी, बिल्कुल
हमारे लोगों को इसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मामला क्या है।
बिल्कुल जरूर,
बेसिकली ये जो गजा की पट्टी है जहां से हमास पे जिसका कब्जा है वो एक बहुत छोटी सी पट्टी है जो तकरीबन 42 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर वाइड है, और 12 किलोमीटर भी थ्रू आउट नहीं है, कुछ जगहों पे वो 5 किलोमीटर सिर्फ वाइड है, इतनी छोटी सी वो इलाका है जिसमें तकरीबन 15 से 20 लाख फलस्तीनी रहते हैं। उस छोटी सी पट्टी पे जहां हमास का कब्जा है वहां पिछले सैटरडे को अचानक सुबह 4-5 बजे के वक्त इन्होंने अटैक किया हमास वालों ने, और ये पहली दफा हुआ है कि इसराइल की अपनी मोसाद और उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनको सपोर्ट हासिल है अमेरिका की इंटेलिजेंस का और दुनिया की बेहतरीन इक्विपमेंट है उनके पास, वो सारे फेल हो गए और अचानक उन्होंने हमला किया और वो 10 से 15 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गए फलस्तीन के एरिया में। वो ग्लाइडर्स के जरिए उन्होंने, आपने वीडियोस देखी होंगी, ग्लाइडर्स के जरिए उन्होंने लैंड किया, फिर उन्होंने वो जो दीवार थी दरमियान में दीवार तोड़ी वहां गए और वहां से उनके लोगों को अगवा करके अपने साथ ले आए अपने इलाके में। एक अंदाजे के मुताबिक 30 तकरीबन जहादे इस्लामी वालों के पास हैं, 100 से ज्यादा लोग हमास के पास हैं जो इन्होंने वहां से उन्हें अगवा करके लाए हैं, 130 से 150 लोग वहां अगवा कुनंदगान में हैं। उनमें बड़े इंपॉर्टेंट और अहम लोग हैं और उसमें कुछ फॉरेन नेशनल भी हैं, सारे इसराइली नहीं है, कुछ दूसरे कंट्री से भी उनका ताल्लुक है। अब इसराइल का मसला यह है कि वो अपने लोगों के लिए कहां तक जाता है ये जो अगवा कुनंदगान है, और इनको अगवा करके लाना क्यों जरूरी था, क्योंकि उन्होंने माजी में भी ये जो हमास वाले हैं या जितने भी फिलिस्तीनी जिहादी ग्रुप हैं वहां, इन्होंने हमेशा जब भी कभी अगवा किए हैं वहां अगवा करके फिर ये उनके साथ डील करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत फिर चलती है। इस दफा एक बड़ी तादाद में ये लोग अगवा करके वहां से ले आए हैं, 150 बंदा कोई कम नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक इनके थे समीर कंतार, एक अफगान फिलिस्तीनी जिहादी थे, यंग 20 अर्ली 20s में थे। इन्होंने कुछ अर्सा पहले समुंदर के रास्ते अटैक किया इसराइल के इलाके में, और वहां से वो तीन बंदे अगवा करके ले आए। ये खुद तीन बंदे थे अटैक करने वाले, बाई सी गए थे, तीन बंदे अगवा करके ये ले आए। जब वापस ये आ रहे थे इन पे इसराइली फोर्सेस ने अटैक किया और इन्होंने इनके तीन बंदों में से दो बंदे मर गए, एक बाप था और एक बेटी थी, तीसरा बंदा बच गया था। इसी दौरान उस झड़प में उन्होंने समीर कंतार को अरेस्ट कर लिया और समीर कंतार पर यह इल्जाम लगाया कि तुमने इस बाप और बेटी को तुमने मारा है। समीर कंतार को उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद समीर कंतार को इसराइल की फोर्सेस से रिहा कराने के लिए एक दफा अलेक्जेंड्रिया के इलाके में एक शिप को अगवा करने की कोशिश की इन फिलिस्तीनी जिहादियों ने। समीर कंतार इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। बाद अजां फिर समीर कंतार को उन्होंने छुड़वाने के लिए एक और इन्होंने एक प्लान बनाया था कि दो फौजियों के जनाजे जा रहे थे उनके उस इसराइल के इलाके में, तो फौजियों के जनाजे पे अटैक करके इन जिहादियों ने, हमास के जिहादियों ने उन दो डेड बॉडीज को कैप्चर कर लिया और वो डेड बॉडीज अपने इलाके में ले गए। अब उन दो डेड बॉडीज को वापस हासिल करने के लिए 2 साल तक इनके मुजाकरात होते रहे हमास के साथ इसराइलियों के। 2 साल बाद उन्होंने एग्रीमेंट ये किया कि समीर कंतार को आप रिहा कर दें और कुछ और कैदियों को उसके आप बदले में हम आपको ये 2 डेड बॉडीज वापस कर देते हैं। इसराइल अपनी 2 डेड बॉडीज के लिए की वापसी के लिए भी समीर कंतार जैसे खतरनाक कैदी को रिहा करने पे आमादा हो गया। इसलिए उन्हें पता है कि इसराइली अपने शहरियों के लिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उनके लिए वो किस हद तक जाता है मुजाकरात में। अब ये 150 इसलिए पकड़े गए हैं, और जब समीर कंतार वापस गए तो उनका वार्म वेलकम हुआ और उन्हें फिर प्रमोशन मिली और बड़ी हद तक वो ईरान के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अहमदी नजाद, उन्होंने उन्हें मेडल दिए और पता नहीं दुनिया भर से उन्हें मेडल दिए गए समीर कंतार को। और इस वक्त समीर कंतार हमास में बहुत आला ओहदे पर हैं। ये सिर्फ एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि वो अपनी 2 डेड बॉडीज को वापस लेने के लिए अगर इस हद तक जा सकते हैं तो अब तो 150 बंदे हमास के हाथ में हैं, तो हमास ने इसलिए वो बंदे अरेस्ट वहां से वो अगवा करके लाए हैं। अब मसला ये है, उनके लिए एक परेशानी ये बनी हुई है कि ये असला कहां से आ रहा है। असला अब जो है, आपको याद होगा कि हमारे theintercept.com ने एक स्टोरी छापी थी कि यूक्रेन में पाकिस्तान ने असला बेचा है अमरीका को और अमरीका ने वो असला यूक्रेन में जाके इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, और वहां से जो गोलियों के हॉल मिले हैं उन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। और आज कतर के आर्मी चीफ इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और हमारे आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। इस वक्त कतर ने और अमेरिका ने हत्ता के उन्होंने ईरान को भी थ्रेट किया
कि आप आगे करें, तो कतर के जो चीफ हैं वो
कतर का एक्टिव होना,
नहीं नहीं आप इसको रिपीट करें, आवाज कट गई थी। कतर के चीफ पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और
हमारे आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। हमें इस वक्त बहुत मुहतात तरीके से चलना होगा क्योंकि हमसे असला अब फिर मांगा जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये जो स्मॉल एमिनेशन होता है वो बहुत बड़ी तादाद में हम बना रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा उसकी रिप्यूट अच्छी है वर्ल्ड मार्केट में। हमसे असला खरीदने की कोशिश की जाएगी, मे बी कतर खरीदे, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा ये यूज कहां जाके होगा। इसलिए अल्लाह ना करे कि कल फिर कहीं फलस्तीन या इसराइल के इलाके में से कुछ गोलियों के खोल मिले और उन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। हमारी गवर्नमेंट को, अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, वो तो खुल के सामने आके बताती कि हमारा क्या मौकफ है। अब चूंकि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है और उनकी मजबूरी ये है कि वो खुल खुला के सामने आके बैठ नहीं सकते और अपना मौकफ दे नहीं सकते। हमारे जो काकड़ साहब हैं वो तो कहीं सोए पड़े हैं और वजीर खारजा सलीम अब्बास सिलानी साहब को यही गम खाया जा रहा है कि वजीर आजम तो मैंने बनना था, मुझे वजीर खारजा पीटर खा दिया गया है और मेरे हाथ में फिर भी कुछ नहीं है। अमल दरामद तो किसी और का होता है, अहकाम कहीं और से आते हैं और आर्मी चीफ खुद ही मुलाकातें करते हैं और वहां से ही फैसले होते हैं। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अगर कल जुम्मे वाले दिन जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने एहतजाज का अनाउंस किया हुआ है, जमात इस्लामी वालों ने अनाउंस किया हुआ है, और सैटरडे वालों वाले दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों का ऐलान किया हुआ है। पाकिस्तान में वेव तो फलस्तीन के हक में है, लेकिन हमारी जो हुकूमती जो अमा हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, और उनको ये भी मजबूरी नहीं है कि वो पब्लिक के सामने आके बताएं कि हम क्या फैसले कर रहे हैं, वो सिर्फ ड्राइंग रूम्स तक और मीटिंग खेल रहे हैं। अल्लाह ना करे उनके यहाँ से कोई ऐसा फैसला हो जो हमारी अवाम की राय के खिलाफ हो। जी
अभी सर आपने जो चीफ के जो चीफ ऑफ द स्टाफ का जब जिक्र किया कि उन्होंने पाकिस्तान, आपने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया कि वो पाकिस्तान से गोलियां लेंगे, मैं भी आपको अंदर की रिपोर्ट बताती हूँ कि एक्चुअली कतर ने अपनी बेसिस दी हुई है सऊदी अरेबिया को, तो शायद कि कतर अब ये चाहता है, सॉरी कतर ने अपनी बेसिस दी हुई है यूएसए को, अमेरिका को अपनी बेसिस दी हुई है, और कतर अब ये चाहता है कि पाकिस्तान कतर जो है वो यूएसए से अपनी बेसिस वापस ले ले और अपनी अपनी नेवी तैयार करे, जो कतर के पास अपनी नेवी नहीं है, और शायद कतर एग्जैक्टली सेम सर्विसेज पाकिस्तान नेवी की हासिल करना चाहता है, जो एक ज़माने में पीआईए जब बड़ी सक्सेसफुल हुआ करती थी तो पीआईए की वो जो सर्विसेज दुनिया हासिल करती थी। तो यस आप कह सकते हैं कि गोलियों पर मेरा ख्याल है कि दिस हैज इट कैरीज वेट कि अमरीका जो है वो कतर की अपनी बहरिया नहीं है, उनकी बेसिस वो रन कर रहा है और कतर पाकिस्तान की नेवी को चाहता है कि वो उनकी नेवी प्रिपेयर करे और ट्रेन करे। लेट्स सी एंड होप।
अभी इसमें सऊदी अरब का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिडिल ईस्ट में लीड सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब ने जो इनको सऊदी अरब का अभी जो ताजा तरीन मामला हुआ है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि यूएन में भी नाकामी हुई है अमरीका को क्योंकि रूस और चीन वहां एक साइड पे हो गए हैं।
तेल की
मामला उस वक्त छिड़ा था जब नेतन्याहू ने वहां एक नक्शा लहराया था जिसे नॉर्मलाइजेशन का खाका उन्होंने पेश किया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया से लेकर यूरोप तक हमारा हाथ होगा और हम आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सऊदीया को उस वक्त समझ नहीं लगी कि ये क्या कर रहे हैं। अब सऊदीया ने थोड़ा सा स्टैंड लिया है और सऊदीया का दो नुकाती मुतालबा है उनका। एक मुतालबा उनका ये है कि वो कहते हैं टू स्टेट हल मांगा है सऊदीया ने, एक फलस्तीन की स्टेट एक इसराइल की स्टेट, टू स्टेट सोल्यूशन एक उन्होंने कहा है। दूसरा सऊदीया कहता है कि हमें सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए कि हमारा क्या होगा। अब सिक्योरिटी की गारंटी अगर अमेरिका ने इसराइल की कीमत पर सऊदी अरब को या दूसरी गल्फ स्टेट्स को देनी है तो ऐसे मौके पे उन्हें सोचना होगा कि क्या हमारी सिक्योरिटी फिर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना है। हाँ इस वक्त हमारा अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो खुल खुला के बात कर सके, क्योंकि अभी इमरान खान ने तो फलस्तीनियों के हक में उस वक्त भी बयान दिया था, अब भी उनका अंदर से वकीलों के जरिए बयान आ गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह खामोश हैं जिस तरह पिछले एक हफ्ते से मलाला खामोश थी और अब बिल आखिर मलाला ने एक बड़ा टेम सा एक बयान दे भी दिया है मजबूरी से, बामरे मजबूरी साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है कि कहां है वो इंसानी हकूक की चैंपियन मलाला यूसुफजई, तो अब मलाला को बयान देना पड़ा है। लेकिन उस तरह मलाला ने बयान नहीं दिया जिस तरह मुसलमान कौम मुसलमान लोग दुनिया के एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब से या हमारे आसिफ अली जरदारी या हमारी कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो मेन बड़े इस वक्त टॉप पे हैं जिनके पीछे चार लोग चलते हैं उनमें से कोई भी उस तरह खुल खुला के बात नहीं कर रहा जिस तरह इमरान खान से लोगों की तवक्को थी। और इमरान खान से इस वक्त भी पाकिस्तान में वो वायरल हो चुकी है वीडियो जो यहाँ न्यूयॉर्क में किसी कोई टर्किश बंदा था गाड़ी में, उसने अपनी गाड़ी के पीछे इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई थी और स्टॉप साइन पे रुका और उसके साथ वीडियो बना रहा था, साथ वाली गाड़ी में कोई पाकिस्तानी, और उसने उससे पूछा कि तुमने इमरान खान की तस्वीर अपनी गाड़ी के पीछे लगाई हुई है कौन हो तुम, उसने कहा मैं टर्किश हूँ, उसने कहा तुमने इमरान खान की तस्वीर पीछे क्यों लगाई है, उसने कहा आई लव हिम, और फिर उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम को मेरा मैसेज दे दो कि डोंट मिस दिस पर्सन, ही इज आवर लीडर, ही इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम नेशन। अगर इस तरह लोगों के दुनिया भर में जज्बात हैं इमरान खान के तो हमें तो उस लीडर को एक एसेट के तौर पर यूज करना चाहिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में से हर कोई अपने जाती वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं, वो इंटरेस्ट जो हमने अपनी वेस्ट के साथ अपने सीने के साथ अपनी छाती के साथ लगाए हुए होते हैं, अपने जाती मफादात होते हैं, छोटे छोटे फायदों और नुकसानों के लिए हम इतने बड़े लीडरशिप को और इतने बड़े लीडर को जिसको दुनिया बगैर देखे बगैर सुने बगैर मिले बगैर जाने दुनिया उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, हम उस लीडर को बिहाइंड द बार हमने रखा हुआ है और हम उसे एक्सरसाइज तक नहीं करने दे रहे, क्योंकि इन सारे जितने बड़े लोग थे उन आली दिमाग जो थे उनको ये बताया गया है कि इमरान खान को तोड़ने का एक ही हल है कि उसे वर्जिश न करनी दी जाए, अगर उसे फिजिकली आप तंग करेंगे वर्जिश नहीं कर पाएगा तो वो मेंटली कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का सारा राज इसमें है कि वो वर्जिश रेगुलर करता है। 18 साल की उम्र से जब से वो क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट उसने खेलनी शुरू किया उस दिन से लेकर 72 साल की उम्र तक उसने कभी एक्सरसाइज का नागा नहीं किया, उसे आप एक्सरसाइज करने से रोक देंगे तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होगी, जिस तरह आप कह रही हैं कि वो कमजोर हुए हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होगी तो मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर होगी, मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर होगी तो वो टूट जाएंगे और फिर वो आपसे टेबल पे बात करने के लिए तैयार होंगे। ये फार्मूला लेके आप वो चल रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक फार्मूला है।
बहुत शुक्रिया। हम हमास से निकले तो फिर एक दफा पाकिस्तान जाके फंस गए, मगर मैं यहाँ पे ये आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, पूरी दुनिया जो है इस वक्त फलस्तीन का साथ देने के हक में नहीं। आप देखिएगा अमेरिका ने आज डोनाल्ड आपके जो बाइडन ने जो बयान दिया है, इट वॉज सिर्फ व्हाट्सएप, और वो उनको देख के उनके अपने दो सीनियर एहलकारों ने भी कहा है कि उसकी कोई तस्दीक नहीं कर पाए। कनाडा में हर पार्टी ने, कोई भी चाहे वो मेयर से लेके